الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا तो ये जो क्लास होती है ये हमारी तरफ से कुरान की क्लास है जो हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन होती है और इसके अंदर हम सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह की मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 5 से। तो इसमें पिछले दर्स में यानी जो पिछले पीर को हुआ था उसके अंदर सूरह यूसुफ में जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाइयों के साथ जो सारा का सारा मामला था वो इख्तिताम पजीर हुआ और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसका जो बिल्कुल एंडिंग स्टेटमेंट भाइयों बल्कि अपनी वालिद साहब को दिया उसमें जो है ना वो अपने अखलाक हमीदा का यानी बेहतरीन मुजाहरा कर दिखाया। अखलाक हमीदा बेहतरीन अखलाक का नमूना पेश कर दिया उसके अंदर। फरमाया वक़द अहसन बी इद अखरजनी मिन सजन कि अल्लाह ताला ने उसने मेरे साथ एहसान किया जब मुझे कैद खाने में से निकाला। व जा अबिकुम मिनल बदवी और आपको ले आया देहात में से। वो मिन बादी अन तन अन नज़ग शैतान इसके बाद के शैतान ने झगड़ा डाल दिया था बैनी और बैना इख्वती मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान। तो इसकी जो तफसीर हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी तो उससे पता चलता है कि यानी जो बशर भी ना इतने बेहतरीन अखलाक के हामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ये नमूना है और हमें यानी अल्लाह ताला ने करके दिखा दिया ना, करवा के दिखा दिया अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम से जो कि बेहतरीन अल्लाह ताला के बंदों में से हैं। तो इसके बाद फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हुए, अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया रब्बी ऐ मेरे रब कद आतैतनी मिनल मुल्क तहकीक के तूने मुझे मुल्क दिया सल्तनत दी हुकूमत दी। वअल्लमतनी मिन तअवील अहादीस और तूने मुझे इल्म सिखाया अहादीस की तावील का। अहादीस से यहाँ पे मुराद जो है वो ख्वाबों की एक्सप्लेनेशन, ख्वाबों की तावील, तावील की तरफ जो है वो समझने के लिए या फेरने का तो लफ्ज़ है यहाँ पे जरा उर्दू मतलूक उर्दू का इस्तेमाल है लेकिन समझ एक्सप्लेनेशन हमारी उंगलू के अंदर इसको एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं और अहदीस यानी बातें। ठीक है, तो इसमें सारी किस्म की बातें भी हो सकती हैं और इससे मुराद जो है वो सिर्फ ख्वाब भी हो सकते हैं। फातिर अस्समावाति वल अर्ध ऐ पैदा करने वाले यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत को मुखातब हो करके ये कह रहे हैं ना रब्बी मेरे ऐ मेरे रब। ठीक है, और यहाँ पर भी फातिरा, ठीक है, यानी ये अल्लाह ताला की सिर्फ सिफत बयान नहीं कर रहा है कि अल्लाह ताला जो है वो आसमानों और जमीन का फातिर है। ठीक है, पैदा करने वाला, फातिर का लफ्ज फितरत पे पैदा करने वाला, फितरत में डालने वाला, लेकिन इसका आम तर्जुमा जो है वो पैदा करने वाला। और पैदा जब कोई चीज होती है ना तो वो अपनी फितरत के ऊपर पैदा होती है। ठीक है, तो इस वजह से फातिर का लफ्ज जो है वो महज पैदा करने वाले से भी ट्रांसलेट कर लिया जाता है और ये है हालत नसब में, ये है हालत नसब के अंदर यानी कि अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं जैसे कि या फातिर असमावाती वल अर्ज, ठीक है। तो या यहाँ पे महजूफ है और सिर्फ जो है ना वो जो जो मुनादी का जो मुनादा है खाली वो हालत नसब के अंदर यहाँ पे मौजूद है। जो ग्रामर थोड़ी बहुत पढ़ चुके हैं वो इन टर्मिनोलॉजीज को समझ सकते हैं। तो ए पैदा करने वाले आसमान और जमीन के, अंता वली ही फिर दुनिया, तू ही दोस्त है मेरा, मेरा वली है दुनिया में भी और आखिरत में भी। अच्छा एक मिनट, जरा ब्रेक लेनी होगी, इसको पॉज कर लीजिए प्लीज। तो अंत वली ही फिर दुनिया, यानी मेरा वली तू ही है दुनिया में भी और आखिरत में भी। तवफ्फनी मुस्लिमन, वफात दीजिए मुझे मुस्लिमन, यानी इन द स्टेट ऑफ सबमिशन, इस्लाम की हालत में, सबमिशन की हालत में, मुसलमान होने की हालत में, यानी ईमान पर खात्मा, ठीक है। तो मुझे वफात दीजिए बहैसियत मुसलमान के, वह अलहिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे मुलहिक मुलहक कर दीजिए, मेरा इल्हाक कर दीजिए। जैसे इल्हाक करते हैं ना, दो चीजें आपस में जम हो जाती हैं, तो इससे उसको इल्हाक करना कहते हैं। तो मेरा इल्हाक कर दीजिए सालिहीन के साथ, मुझे मिला दीजिए नेक बख्तों के साथ, सालिहीन के साथ। खुलासा तफसीर जो कि हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेख मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर बयानुल कुरान से यहाँ पे नकल फरमाई है। तो उसमें हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो उसकी तफसीर होती है और अंडरलाइन जो होते हैं वो तर्जुमा होता है। तो फरमाते हैं कि इसके बाद सब हंसी खुशी रहते रहे, यानी अब जो है ना वो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुलवा लिया पूरी की पूरी अपनी फैमिली को। तो वालिद वालिदा, अगर वालदा हयात थी, वरना खाला वो बहैसियत वालदा थी, और सारे भाई और भाई की भाइयों की बीवियां और उनके बच्चे और जो भी 90 के करीब आ गए, आदद लिखा हुआ भी है, सारे सारे आ गए। तो इट ऑल बिकेम ए हैप्पी एंडिंग, बेहतरीन जो है ना वो एक अच्छी सी खुशी खुशी वाली जो है वो गोया के दास्तान यहाँ पे मुकम्मल हुई। यहाँ तक के याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र खत्म पर पहुंची, हंसी खुशी जिंदगी गुजारी, ठीक है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, राइट। जिंदगी तो खैर इतनी हंसी खुशी सारी की सारी नहीं गुजरी, रोते धोते यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिराक में रोते धोते गुजरी, लेकिन खात्मा बिलखैर हो गया, खात्मा अच्छा हो गया। तो फिर पुरानी चीज इंसान भूल जाता है, इंसान को वैसे भी अल्लाह ताला ने निसियान की सिफत दे करके पैदा किया है, तो वो भूल जाता है। तो याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र खत्म पर पहुंची, जितना भी खुश रह लो लेकिन बिल आखिर जुदा इस दुनिया में होना ही है, ठीक है। जुदाई एक ऐसी चीज है, मौत एक ऐसी चीज है जो कि इस दुनिया के कॉन्स्टेंट्स में से एक कॉन्स्टेंट है। एवरीथिंग एल्स इज वेरिएबल, हर चीज जो है ना वो अदलती बदलती रहती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। एक मौत ऐसी चीज है जो कि लाजिमन होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी हो, बेकार इंसान हो, फायदेमंद इंसान हो, अच्छा इंसान हो, बुरा इंसान हो, खुश इंसान हो, गमजदा इंसान हो, तंदुरुस्त हो, बीमार हो, जैसा भी हो, इस दुनिया के अंदर खात्मा, ठीक है। तो ये जिंदगी मौत के दाग से दागदार है, मौत के दाग से, फिराक के दाग से दागदार है, ये दाग लगना ही लगना है, हम सबको लगना है, ठीक है। तो ये एक ऐसी हकीकत है जो कि हम सब पर आनी है, आप पर भी और मुझ पर भी, ठीक है। तो याकूब अलैहिस्सलाम पर भी वो आई और बाद वफात उनकी वसीयत के मुताबिक मुल्क शाम में ले जाकर अपने बुजुर्गों के पास वो दफन किए गए, जमीन में जान है ना, ठीक है। तो वो भी दफन किए गए, बड़े बड़े यानी पहाड़ जो थे, बड़े बड़े जिबाल थे, चाहे वो ताकत के जिबाल हो, चाहे वो इल्म के जिबाल हो, चाहे वो तकवा के जिबाल हो, जो भी हो, सब ने मट्टी के अंदर जाना है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी आखिरत का इश्तियाक हुआ और दुआ की के, यानी इन्होंने हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने तफसीर में वो या के हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कि जब मौत आ गई ना, तो उसके बाद फिर उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ करी। अब वो उस वक्त दुआ करी या अपने भाइयों और बाप वगैरह से जो मुलाकात वगैरह हो गई, बातचीत हो गई, डिस्कशन हो गई, उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो गए, ईदर वे ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस वक्त हो या बाद में हो। लेकिन अगर वालिद की मौत के बाद इस तरीके से अपनी मौत के बारे में बात करी, तो ये भी एक अकल को लगने वाली बात है कि जब बाप इस दुनिया से चला जाता है ना, तो एक तरह से इंसान यानी जो बेटा होता है वो फिर बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आ जाता है, ठीक है, यानी गोया कि एक जनरेशन चली गई, अब हमारी जनरेशन की बारी, अब मेरी जनरेशन की बारी, ठीक है। तो जब बड़े सर पे होते हैं ना, तो एक फिर भी एक बजाहिर एक धोखा सा रहता है कि हाँ भाई अभी तो ये जाएंगे, फिर हमारी बारी आएगी, ठीक है ना। वैसे तो इस दुनिया के अंदर आने की तरतीब तो अल्लाह ताला ने रखी है, जाने की कोई तरतीब नहीं रखे, राइट, यानी दादा ही पहले आता है और फिर उसके बाद बाप आता है, फिर उसके बाद जो है वो पोता आता है। ये नहीं हो सकता कि पोता पहले आ जाए दादा साहब बाद में आ रहे हैं, राइट, या बेटा पहले आ जाए और बाप बाद में आए, ये तो नहीं हो सकता ना। दुनिया में अल्लाह ताला की बनाई हुई तरतीब ऐसे नहीं है, ठीक है, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है कि दादा ने पहले जाना है, उसके बाद ही बाप ने जाना है, उसके बाद ही पोते ने जाना है, उसके बाद ही पड़पोते ने जाना है, इसकी कोई तरतीब नहीं है, सबको पता है ये बात, ठीक है। लेकिन फिर भी इंसानी मुआशरे में या इंसान के जो एक सोचने का अंदाज होता है साइकोलॉजिकली, तो वो ये होता है कि जी अब जब ऊपर वाले चले गए ना, अब तो फिर मेरी ही बारी है, ठीक है। तो इस तरह से फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी आखिरत का इश्तियाक हुआ, यानी पहले भी इश्तियाक था, ऐसा नहीं था कि पहले जो है वासर की फिक्र नहीं थी, अब फिक्र हो गई, और उन्होंने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, आपने मुझको हर तरह की नेमतें दी, जाहिरी भी बातिनी भी, जाहिरी ये कि मसलन सल्तनत का बड़ा हिस्सा दिया, ठीक है। अब ये अगेन एक और मौका था कि जिसके अंदर अल्लाह ताला से शिकायत भी कर सकते थे कि अल्लाह मेरी जिंदगी का इतना कीमती वक्त जो है ना वो तो गुलामी में कट गया, वो तो कुएं में कट गया, वो तो यानी किसी की चाकरी करते हुए कट गया, ठीक है ना, और फिर उसके बाद जो है वो कैद खाने में कट गया, मेरे जिंदगी के सुनहरी दिन तो जाया हो गए, राइट, आखिर में जाकर के, और वो आखिर जो है वो आगे में पता चलेगा कि कुछ कुछ के हिसाब से तो बहुत आखिर, यानी बहुत लंबे अरसे के बाद जब बूढ़े हो गए यूसुफ अलैहिस्सलाम, तब जो है वो उनको अच्छे वक्त मिले, ठीक है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान का जो मोमिन होते हैं ना उसका कोई लम्हा जाया नहीं, उसका कोई लम्हा जाया नहीं होता। मोमिन का काम ये नहीं है कि वो जैसे बच्चों को भी क्लास में भी काफी बात हुई है ना, कि वो झंडे गाड़ता रहे, राइट, और शादियाने बजाता रहे, चाहे वो दीन के शादियाने बजाता हो और दीन के झंडे गाड़ता हो, नहीं, मोमिन उस दुनिया में इस मकसद से नहीं आया है, ठीक है ना। तो जब झंडे गाड़ना उसकी जिंदगी का मकसद है ही नहीं, फुतुहात करना दुनिया के अंदर और जो है वो लोगों को अपना मुरीद बनाना और लोगों को अपना शागिर्द बनाना और जो है वो जगह फतह करना और दीन को जो है वो इस्टेब्लिश करना, राइट, जब ये उसकी जिंदगी का मकसद है ही नहीं, उसकी जिंदगी का मकसद तो है प्योर एंड सिंपल बंदगी। उसकी जिंदगी का क्या मकसद है? प्योर एंड सिंपल बंदगी। तो भाई बंदगी करने के लिए तो आपको बादशाह का तख्त नहीं चाहिए ना, आपको बादशाह का दरबार नहीं चाहिए ना, कुएं के अंदर है वहां भी बंदगी करेगा, किसी के घर के नौकर की जिंदगी गुजार रहा है वहां पर भी बंदगी करेगा, कैद खाने में चला जाएगा वहां पर भी बंदगी करेगा, और जब बादशाह के तख्त पे बैठेगा वहां पर भी बंदगी करेगा। तो जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी है, जिंदगी तो बंदगी के लिए अल्लाह ताला ने दी है, बेबंदगी तो फिर सारी की सारी शर्मिंदगी है, तो वो तो मोमिन के साथ नहीं होता ना, ठीक है। माशाल्लाह कितना अच्छा शेर इन्होंने नकल किया यहाँ पर, कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की थकन कैसी, यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। तो यहाँ पे मंजिल ये कोई थोड़ी है कि जी फतह नसीब हो गई और लोगों को जो है वो अपना गुलाम बना लिया, या लोगों को अपना जो है वो चाहने वाला बना लिया, लोगों को अपना मुरीद बना लिया, लोगों को अपना फलाना बना लिया, ढिमकाना बना लिया, ठीक है ना। मंजिल की हवस कैसी, कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, जजाकुम अल्लाह, इन्होंने इस्लामी कर दी माशाल्लाह, एक से एक शायर माशाल्लाह मौजूद है इधर, ठीक है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जितने भी साल गुजरे, चाहे 40 साल गुजरे चाहे 80 साल गुजरे, इस इन मुश्किलात के अंदर जाया कोई भी लम्हा नहीं, कोई भी लम्हा जाया नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा भी यही, हमारे लिए क्या है ये, किताबें कसस पसस, किताबें कहानियां या किताबें हिदायत। अगर ये हमारे लिए किताबें हिदायत है जिसको कि हम हिदायत के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारा भी कोई लम्हा जाया नहीं हो रहा अगर हम बंदगी कर रहे हैं। और अगर हम बंदगी के स्टेट में नहीं हैं, तो फिर हम जो है ना वो मुसलमानों के अगर बादशाह भी बन जाएंगे या हम बहुत बड़े जो है ना वो फातिह भी बन जाएंगे, तो भी वो गंदगी ही गंदगी है, कामयाबी नहीं। ठीक है, तो बहुत सादा सी बात है। तो बहरहाल इन्होंने कहा कि जी इन्होंने जो है ना वो सारी जो इनके तकलीफ के कठिन वक्त गुजरे थे, तो उनकी शिकायत करने के बजाय फिर जो है ना वो पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव जो है वो उसका जुबान से इजहार भी कर रहे हैं कि आपने मुझे सल्तनत का बड़ा हिस्सा दे दिया। और बात नहीं ये कामयाबी के, मसलन मुझको ख्वाबों की ताबीर देना तालीम फरमाया, ठीक है। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने अहादीस का तर्जुमा यहाँ पर ख्वाबों से ही किया, तावील अहादीस, ख्वाबों की ताबीर, जो कि इल्म अजीम है। यानी ये एक वहबी इल्म होता है, ख्वाबों की ताबीर जो है ना ये वहबी इल्म होता है, ये कस्बी इल्म नहीं होता। यानी आप इसको अपनी मेहनत के जरिए से किताबें छान छान करके और जो है वो कोड क्या कहते हैं कोड इसका कोई याद करके, जैसे कि मोर्स कोड, राइट, एक कोड है उसको आप जो है वो रट सकते हैं, उसको जो है आप सीख सकते हैं, कोई और जो है वो मशीन कोड है, मशीन लैंग्वेज है, जैसे कि कंप्यूटर्स की जो होती है ना वो असेंबली लैंग्वेज होती है, तो उसको जो है वो आप मेहनत करके सीख सकते हैं कि मशीन के साथ कैसे बात करनी है कंप्यूटर के साथ। लेकिन ख्वाबों की तावील जो है ना ये नहीं सीख सकते, ठीक है ना। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो जिसको तोहफतन मिलती है तो उसको मिलती है, इसको वहबी इल्म कहते हैं, ठीक है। अलबत्ता किसी की वहबी इल्म को उसने अगर खुद जो है वो किताबों में लिख दिया कि भाई इस ख्वाब की ये तावील होती है, इस ख्वाब की ये का ये मतलब होता है, इस ख्वाब का ये मतलब होता है, तो अब कोई जो है वो उस किताब में रिफर कर सकता है कि फलाने शख्स को ऐसा ख्वाब आया था, तो उन्होंने जो है ना वो जैसे अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की ताबीर रोया एक किताब मशहूर है, तो उसके अंदर जो है ना वो देख करके अच्छा उन्होंने लिखा था कि अगर ये देखे ख्वाब में तो उसका ये मतलब होता है, तो वो खाली रेफर कर सकता है उस किताब। इसका मतलब ये नहीं है कि उस ख्वाबों की तावीन का इल्म अल्लाह ताला ने अता फरमाया, नहीं, इसको नहीं अता फरमाया। इज दिस द तफसीर ऑफ मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। जी हाँ, यही तो पढ़ रहे हैं, यही तो बताया था शुरू में, ठीक है। तो ये जो ख्वाबों की तावील है वो इल्म अजीम है, खुसूसन जबकि वो यकीनी जो मौकूफ है वही पर, बस इसका वजूद मुस्तलजम होगा अताए नबुवत को, ठीक है। यानी यकीनी ख्वाबों की ताबीर का जो इल्म होता है ना, तो ये यानी वही पर ही मौकूफ होता है, यानी वही से ही मिलता है। अलबत्ता अगर किसी उम्मती को भी ये इल्म अल्लाह ताला ने वदियत फरमा दिया, तो वो वही नहीं कहलाएगी बल्कि वो इल्हाम कहलाएगा, वो इल्हाम कहलाएगा। और इल्हाम के लिए भी जो है ना वो लफ्जन वही का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यूहा इलैही, कुरान मजीद के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के लिए वही का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा नबी नहीं थी, तो उनको फिर कैसे वही आ गई, उनको इल्हाम हुआ, उनके इल्हाम के लिए भी वही का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। शहद की मक्खी को के ऊपर वही नाजिल हुई, शहद की मक्खी कौन सी जो है वो तो इंसान भी नहीं है, तो उसके ऊपर वही कैसे नाजिल हो गई, नहीं, उसके ऊपर इल्हाम हुआ था, ठीक है ना। शहद की मक्खी पर इल्हाम होता है कि ऐसे ऐसे अपना छत्ता बनाना है, ऐसे जो है फूलों से जा करके रस को चूसना है, लेकिन लफ्जन उसके लिए वही इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो किसी उम्मती के ऊपर भी अगर ख्वाबों की ताबीर का इल्म अल्लाह ताला ने वहबी तौर पर दिया है, तो उसके लिए वही का लफ्ज इस्तेमाल होना कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। बहरहाल, तो मौकूफ है वही, मौकूफ है वही का मतलब यानी अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है, ये इंसान कसबन इसको हासिल नहीं कर सकता, बस इसका वजूद मुस्तलजम होगा अताए नबूवत को। ए खालिक आसमानों और जमीन के, आप मेरे कारसाज हैं। कारसाज कराची के एक इलाके का नाम है, कारसाज सड़क नहीं, बल्कि कारसाज का मतलब असल में क्या होता है, काम बनाने वाला, कामों को दुरुस्त करने वाला, कामों को ठीक करने वाला, ठीक है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, ठीक है। यानी सिर्फ आखिरत में नहीं कि जी मरने के बाद अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देंगे, जन्नत में डाल देंगे और कयामत के दिन जो है ना वो अर्श का साया अता फरमा देंगे, दुनिया में तो बस हर काम खराब ही होना है, दुनिया में तो बस जो है ना वो घिसना पिटना और लुटना पिटना ही है खाली कुछ नहीं, दुनिया में भी अल्लाह ताला ही कारसाज है। दुनिया में हम अपनी अकल समझ और अपने इल्म और अपने वसाइल और अपने खानदान की बुनियाद पर अपने कामों को ठीक नहीं करते, ठीक है ना, बल्कि वो भी अल्लाह ही करता है हमारे काम को ठीक। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना, वो ईमान की यानी पूरी की पूरी फुल पिक्चर, फुल पैकेज, ये नहीं कि भाई आखिरत के ऊपर ईमान नहीं, कि आखिरत में अल्लाह ताला मालिक यौम दीन, अल्लाह ताला जो है वो कयामत के दिन का मालिक, और इस दुनिया का मालिक कौन है भाई, इस दुनिया का मालिक या तो मैं हूं या जो है ना वो कोई और मुल्की लीडर है या कोई दुनियावी लीडर है, दुनिया के मालिक तो ये हैं, आखिरत का मालिक है अल्लाह ताला। हाँ मैं मुसलमान हूं ना, मैं आखिरत का ईमान रखता हूँ ना, तो आखिरत का मालिक अल्लाह ताला है, दुनिया का मालिक कौन है भाई, नहीं, दुनिया का मालिक तो मैं खुद हूँ, यानी या मेरे बाप दादे हैं, या मेरे जो है ना वो चौधरी हैं, या मेरे जो है वो हमारे यहाँ जो है वो आर्मी वाले हैं, दुनिया के मालिक है कोई नहीं, दुनिया का मालिक है ये, इस दुनिया का मालिक भी अल्लाह ताला है, और इस दुनिया के काम बनाने वाला भी अल्लाह ही है, अल्लाह भी नहीं है, अल्लाह ही है, ठीक है ना। अगर भी जो कि हमारे अंदर से तो आवाज यही निकलती है, मुसलमान है ना आखिर को, दीनदार मुसलमान है ना, तो इस वजह से हम अल्लाह भी तक तो पहुंच गए हैं, वरना जो दुनियादार होता है, जो सेक्युलर किस्म का इंसान होता है, वो तो कहता है जी अमीर कबीर ही है, दुनिया का काम बनाने वाला कौन है, अमेरिका है, रूस है, चाइना है, राइट, और जो भी दुनिया के अंदर दुनियावी एतबार से मेहनत करता है, और टेक्नोलॉजी जिसके पास होती है, और जिसके पास जो है वो वॉट एवर फोर्सेज और रिसोर्सेज और ये सब होते हैं, तो वही है दुनिया का काम बनाने वाला। जबकि हमारे जैसे मौलवी साहब वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और हम किस लेवल तक पहुंचे हैं, दुनिया का काम बनाने वाला अल्लाह भी है, हम भी तक पहुंचे हैं अभी तक, ठीक है, नहीं, तौहीद जो है ना वो भी को एक्सेप्ट नहीं करती, भी इज शिर्क, भी क्या है, शिर्क, उर्दू वाले भी की बात कर रहा हूँ, कोई किसी और लैंग्वेज के भी की बात नहीं कर रहा, PHI, ठीक है ना, ये शिर्क है, अल्लाह ताला शिर्क को कबूल भी नहीं करते, और अल्लाह ताला शिर्क को माफ भी नहीं करते, अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करते, बाकी हर चीज को माफ कर देते हैं, शिर्क को माफ नहीं करते, ठीक है ना। तो अगर हमने कलमा तो पढ़ा हुआ है, तो उस मुसलमानों में हमारा नाम तो दाखिल हुआ हुआ है, लेकिन हमारी सोच अभी तक शिरकिया है, हमारी सोच अभी तक शिरकिया है, अल्लाह ताला हमें भी माफ नहीं करेंगे, ठीक है ना। दुनिया की जहन्नुम तो कम से कम पक्की है, आखिरत की जहन्नुम ईमान की वजह से शायद अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा दें, ठीक है ना, ईमान पे खात्मा हो गया तो फिर मेहरबानी फरमा दें, दुनिया की जहन्नुम से नहीं बच सकते, दुनिया की रुसवाई से, दुनिया की जो है ना वो जिल्लत से, और दुनिया की जो है ना वो डिप्रेशन से और टेंशन से और एंग्जाइटी से और इन सब से नहीं बच सकते, क्योंकि अल्लाह ने माफ नहीं करना, शिर्क को माफ नहीं करना अल्लाह ताला, याद रखें इस बात को, अल्लाह ताला ने शिर्क को माफ नहीं करना, तो इस शिर्क से हम कैसे निकलेंगे, हम दाढ़ी वाले मुसलमान कैसे निकलेंगे इस शिर्क से, जब हम अपनी सोच को ठीक करेंगे, और इस शिर्क के ऊपर हम अल्लाह से तौबा करेंगे, तौबा करेंगे, नादिम होंगे, शर्मिंदा होंगे कि ए अल्लाह मैं आपके साथ दुनिया की कुव्वतों को, ताकतों को और वसाइल को शरीक करता रहा हूं, ए अल्लाह आप मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूं इस गुनाह कबीरा के ऊपर जो कि मैं अब तक करता आ रहा हूं या करती आ रही हूं, ठीक है, माफी मांगे ना भाई, तो तैयार है, इरादा करें, तबलीग जमात वाले भाई का इरादा करें, नहीं इरादा नहीं करना, इरादा नहीं करना, अभी माफी मांगनी है, शिर्क के साथ एक लम्हा मजीद नहीं गुजार सकते, नॉट अनदर सेकेंड ऑफ आवर लाइफ, हम एक लम्हा और इस शिर्क के साथ नहीं गुजार सकते, हम अभी ए अल्लाह से माफी मांगते हैं सब के सब, ठीक है ना, जितने भी माशाल्लाह एज मौजूद हैं, डीज मौजूद हैं पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट के अंदर, है? और जो अपने ऊपर भी मौजूद हैं एच वाले साहब भी, ठीक है, सब ने अभी तौबा करनी है, अल्लाह मैं शिर्क से तौबा करता हूं कि इस दुनिया के काम भी आप ही बनाने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आप बनाने वाले, बाकी जो लोग हैं, मेरी अम्मी हैं, पप्पा हैं, मामा हैं, जो भी हैं, वो सिर्फ असबाब हैं और बस, उनकी कोई और हैसियत नहीं है। उनकी हैसियत सिर्फ सबब की है, सिर्फ सबब की उनकी हैसियत है। आप उसको बतौर सबब के इस्तेमाल करते हैं, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो इनकी कोई जरूरत नहीं है आपको काम बनाने के लिए, आपको इनकी भी कोई जरूरत नहीं है, मम्मा डैडी की भी कोई जरूरत नहीं है आपको मेरे काम बनाने के लिए, आप इनके बगैर भी मेरे काम बना सकते हैं, ठीक है ना। इस सोच से तौबा जब तक नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक जिल्लत और रुसवाई हमारे गले का तौक बनी रहेगी, जिल्लत और रुसवाई, चाहे अपने पर्सनल बेडरूम में आपकी जिल्लत और रुसवाई हो रही हो, बीवी के हाथों, अगर बीवी है तो शौहर के हाथों जिल्लत और रुसवाई हो रही हो, बाप है तो बच्चों के हाथों जिल्लत और रुसवाई हो रही हो, माँ है तो औलाद के हाथों जिल्लत और रुसवाई हो रही हो, या जो है वो घर के बाहर किसी और के हाथों जिल्लत और रुसवाई हो रही हो, या अक्वाम आलम के अंदर बहैसियत उम्मत की जो है वो जिल्लत और रुसवाई हो रही हो, उस वक्त तक ये गले का तौक बनी रहेगी जब तक इस शिर्क से तौबा नहीं करेंगे, जब तक इस शिर्क से तौबा नहीं करेंगे। आमाल से रिश्वत नहीं चलेगी, आमाल की रिश्वत नहीं चलेगी। हम क्या कर रहे हैं, हम आमाल की अल्लाह ताला को रिश्वत देना चाहते हैं। रिश्वत का मतलब क्या होता है, जो सीधा तरीका होता है ना काम करवाने का, उस तरीके से काम नहीं करवा सकते ना, तो फिर रिश्वत देते हैं, आप ये ले लीजिए, है ना, ये दूसरे तरीके से काम कर दीजिए मेरा, क्योंकि सीधे तरीके से जो है ना वो मैं काम नहीं करवाना चाहता या मैं काम नहीं कर सकता। इस वजह से ना हम उम्रों की रिश्वत देते हैं अल्लाह ताला को, हम हजों की रिश्वत देते हैं अल्लाह ताला को, हम अपनी तहज्जुदों की और अपनी जकातों की, अब जकातों की नहीं, हम अपनी सदकों और खैरातों की और दूसरे इस किस्म के चैरिटी वर्क्स की, या किताबें पढ़ने की और इल्म पढ़ने की और पढ़ाने की, दीन का इल्म पढ़ लिया, फलाना पढ़ लिया, धमकाना पढ़ लिया, और ये कर दिया वो कर दिया, ये आमाल है सारे के सारे। अल्लाह ताला के पास रिश्वत नहीं चलती, अल्लाह ताला के पास थ्रू प्रॉपर चैनल सीधा रास्ता इख्तियार करो अल्लाह ताला के साथ, और सीधा रास्ता जो है ना वो सोच, गंदी सोच से तौबा के बगैर ये सीधा रास्ता हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता सीधा रास्ता, जब तक इस गलीज गंदी बदबूदार सोच से हम तौबा नहीं करें, ठीक है। बहुत देर आपका सर खा लिया है, तौबा तो इंशाल्लाह सबने कर ली होगी, ना करी तो फिर उसकी मर्जी है, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, सॉरी, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से फरमाया, जिसका तर्जुमा बनता है कि ए खालिक आसमान और जमीन के, आप मेरे कारसाज हैं दुनिया में भी और आखिर, बस जिस तरह दुनिया में मेरे सारे काम बना दिए कि सल्तनत दी, इल्म दिया, ठीक है, उसी तरह आखिरत के काम भी बना दीजिए कि मुझको फरमाबरदारी की हालत में दुनिया से उठा लीजिए, मेरा खात्मा बिल खैर फरमा, खात्मा बिल खैर, ठीक है। जब तक खात्मा बिल खैर ना हो ना, सारी दुनिया के आमाल, सारी दुनिया की शोहरत, सारी दुनिया की जो नेक नामी है, सब बर्बाद है, सब बर्बाद है, कोई फायदा नहीं इन इन इन, इन, इन चीजों का, इन नेक नामियों का, या इन आमाल का, किसी भी चीज का, अगर खात्मा बिल खैर ना हो। और खास नेक बंदों में मुझे शामिल कर दीजिए, यानी मेरे बुजुर्गों में जो अंबियाए उजाम हुए हैं उनमें मुझको भी पहुंचा दीजिए, ठीक है। इहदिनस सिराप अल मुस्तकीम, सिराप अल लजीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता, सिराप अल लजीना, ठीक है ना, उन लोगों का रास्ता, बल्कि अल लजीना यानी सिराप की क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, सिराप अल मुस्तकीम की क्या डिस्क्रिप्शन है, लोगों का रास्ता, अनअमत अलैहिम, जिनके ऊपर आपका इनाम हुआ, गैर मग़दूब अलैहिम वलाद्दाल्लीन, तो वो कौन है, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बुजुर्ग अंबियाए उज़ाम हजरत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और उनसे पीछे जो अंबिया गुजरे हैं। मआरिफ़ व मसाइल में फरमाते हैं कि साबिक़ आयात में तो वालिद बुजुर्गवार से खिताब था, इसके बाद हाँ, तो इसके बाद जबकि वालिदैन और भाइयों की मुलाकात से एक अहम मकसद हासिल होकर सुकून मिला, तो बराहे रास्त हक तआला की हम्दो सना और दुआ में मशगूल हो, ठीक है। अब शेख साहब ने क्या लिखा है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह कौन है, शेख, ठीक है, कि जब याकूब अलैहिस्सलाम वफात पा गए तो उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है मुतवज्जो हुए अल्लाह ताला की तरफ, उन्होंने ऐसे दुआ मांगी। मुरीद साहब क्या लिख रहे हैं, ये मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह कौन है, ये मुरीद है, ठीक है ना, हजरत अशरफ अली थानवी के खलीफा हैं। ये क्या लिख रहे हैं कि जब वालिदैन और भाइयों की मुलाकात से एक अहम मकसद होकर सुकून मिला तो बराह रास्त हम ताला के हम्द सना और दुआ में मशगूल हो गए। इल्मी इख्तलाफ, इल्मी इख्तलाफ कर रहे हैं अपने शेख के साथ। शेख कह रहे हैं कि वो बहुत बाद में जब याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तब जो है वो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो के ये वाली दुआ मांग रहे हैं, और मुरीद साहब क्या लिख रहे हैं, नहीं बस बातचीत से फारूक हो गए, अब अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो हो गए। ठीक है, तो ये जो इल्मी इख्तलाफ होते हैं ना, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये पहले भी हुआ है, अभी भी हुआ है, हमेशा ही होता रहेगा। और इसके अंदर कोई, एज लॉन्ग एज के अंदर बेअदबी ना हो, एज लॉन्ग एज के अंदर बड़ों के साथ जो है ना, बड़ों के ऊपर तनकीद ना हो, यानी जो मनफी तनकीद होती है, जो कि बेअदब अदबी के साथ जो है वो जो की जा रही होती है, ठीक है, तो फिर इस इल्मी इख्तलाफ के अंदर कोई मसला नहीं होता। ये उम्मत के अंदर पहल, यानी सहाबा कराम के दौर से ये चीज़ मौजूद है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर से, सहाबा कराम के दरमियान इल्मी इख्तलाफ नबी अलैहिस्सलाम के सामने हुआ है, ठीक है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये प्यारी सिफर, प्यारी जो खसलत है कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जब जलवत में थे अपने बाप और भाइयों के साथ, वहां पर भी जगह जगह अल्लाह का जिक्र, जगह जगह अल्लाह ताला ने ऐसे कर दिया, अल्लाह ताला ने वैसे कर दिया, अल्लाह ताला ने की मेरे ऊपर मेहरबानी हो गई, और अल्लाह ताला जो है वो ये करता है ना, जलवत में, जलवत कहते हैं जब लोगों के साथ होते हैं, वहां पर भी अल्लाह ताला से गाफिल नहीं होते, और जब खलवत होती है, जब तन्हाई होती है, तो फिर तो पूरी तौर पे अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होता है, और अल्लाह ताला के साथ जो है ना, फिर वो यानी पैसिवली खाली नहीं, बल्कि एक्टिवली भी जो है वो अल्लाह ताला के साथ कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब जो है ना, वो खलवत की बात हो रही है, रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्की व अल्लमतनी मिन तअवील अहदीस فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، यानी ऐ मेरे परवरदिगार, आपने ही मुझको सल्तनत का बड़ा हिस्सा दिया और मुझको ख्वाबों की ताबीर देना तालीम फरमाया, तू ही तू ए अल्लाह, तू ही तू, जो कुछ मिला मुझे तुझसे ही मिला, ए आसमान और जमीन के खालिक, आप ही दुनिया और आखिरत में मेरे कारसाज हैं, मुझको पूरी फरमा बरदारी की हालत में दुनिया से उठा लीजिए की हालत, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का पूरी की पूरी जमीआ कदालिक मैं यफअलुल रशीद, रशीद जो रशीद बंदा होता है ना, जो सीधा बंदा होता है, नेक बंदा होता है ना, वो ऐसे ही करता है, वो कहता है अल्लाह मैंने सारे लात और उज्जा को छोड़ दिया, जितने तखय्युल के बुत थे उनको भी छोड़ दिया, पत्थर के बुत और मिट्टी के बुत तो पहले ही छोड़े हुए थे, तखय्युल के बुतों को भी मैंने तोड़ दिया, छोड़ दिया। इसको कहते हैं पूरी की पूरी फरमाबरदारी में दाखिल हो जाओ। अब बतकाज़ाए बशरियत, अगर कोई गलती हो जाती है तो उस गलती के ऊपर तौबा कर लेता है, माफी मांग लेते हैं। इस्तिग़फ़ार किस लिए रखा है अल्लाह ताला ने, मोमिन से गलती हो जाए, मोमिन उसके ऊपर इस्तिग़फ़ार कर ले, माफी मांग ले, ठीक है। और अल्लाह ताला ऐसे जो गलती करने वाले होते हैं ना, अल्लाह ताला उनके ऊपर बड़ी मेहरबानी फरमाए, बड़ी माफी तलाफी का मामला उनके साथ रखते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं पूरी फरमाबरदारी। इसका मतलब ये नहीं होता कि गलती हो ही नहीं सकती, गलती कभी भी नहीं करता, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता, पूरी फरमाबरदारी का मतलब ये नहीं होता, गलती होती है इंसान से, हर इंसान से होती, बड़े बड़े इंसानों से हो जाती, ठीक है, लेकिन वो उसके ऊपर जमते नहीं है, वो उसके ऊपर इसरार नहीं करते, उसकी हक में जो है वो हुज्जतें नहीं बनाते, बल्कि अल्लाह ताला से माफी मांगते। तो हमें अल्लाह ताला का हुक्म है कि पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, और इसका मतलब यही है कि हम अपनी सोच के एतबार से पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं, अमलन हमसे गलती हो गई तो हम जो है वो माफी मांगे अल्लाह ताला से, बस खलास, ठीक है। और इसके लिए भी क्या, ये भी हम अपने बलबूते पे ये काम नहीं कर सकते, पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाना, इस्लाम में दाखिल हो जाना, पूरी की बिरफानदारी अख्तियार कर लेना, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल तरीन काम है। इस वजह से अल्लाह ताला से दुआ करते रहना इसके लिए, ए अल्लाह आप ही जो है ना मुझे दाखिल करवा दिए मुसलमानों के अंदर, ठीक है, तवफ्फनी मुस्लिम व अल्हिकनी बिस्सालिहीन, मुझको पूरी फरमाबरदारी की हालत में दुनिया से उठा दीजिए और मुझको कामिल नेक बंदों में शामिल रखिए। यहाँ पे हजरत ने रखिए का लफ्ज इस्तेमाल किया इसकी तफसीर के अंदर, ये नहीं कि मुझे मरने के वक्त जो है ना वो नेक बंदों में शामिल फरमा दीजिएगा, अभी तो मैं जरा अपने यारों के साथ वक्त गुजारूँ, मैं जरा जो है ना वो दुनियादारों के साथ और जो है वो अपने ख्वाहिशात पूरी कर लूँ, अपने जो है वो मैच वगैरह खेल लूँ और जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर अपना वक्त लगा लूँ या टीवी के ऊपर अपना वक्त जाया करूँ या फोन के साथ अपना वक्त जाया करूँ, हाँ मरने के वक्त जो है ना मुझे आप पहुंचा दिएगा नेकों के दरमियान, अभी नहीं, अभी मैंने नहीं करना, नहीं, बल्कि उसूल क्या है कि जैसी जिंदगी गुजारोगे तुम्हें मौत भी वैसी आएगी, ठीक है, तो फिर जिंदगी भी अच्छी नेकों के साथ जो गुजारता है ना तो उसको मौत में फिर नेकों का साथ नसीब होता है, और जो जिंदगी में नेकों के साथ नहीं गुजारना चाहता ना वो उनसे उनको अवॉइड करता है, वो उनसे भागता है, उनसे जो है वो बात नहीं सुनता, उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता, तो मौत भी फिर उसको ऐसी आती है। तो फरमाते हैं कि कामिल नेक बंदे अंबिया अलैहिस्सलाम ही हो सकते हैं जो हर गुनाह से मासूम हैं। विलायते कुबरा के दर्जे के ऊपर जो जो उम्मती मौजूद होते हैं तो वो भी गुनाहों से जो है वो महफूज होते हैं, मासूम नहीं होते, मासूम जो है वो सिर्फ अंबिया कराम होते हैं। क्या मतलब कि उनसे गुनाह सरजद हो ही नहीं सकता, वो केपेबल ही नहीं है गुनाह करने, और महफूज का मतलब वो होता है कि उससे गुनाह हो तो सकता है लेकिन वो उस गुनाह के ऊपर यानी इसरार नहीं कर सकता, वो अल्लाह ताला की हिफाजत में होता है, यानी अल्लाह ताला जो है ना फिर उसको तौबा की तौफीक अता फरमा देते हैं, ऐसे बंदों को महफूज कहा जाता है, और महफूज वो फिर कौन है, वो सहाबा कराम है गुनाहों से महफूज, ठीक है, और जो है वो उम्मत के अंदर जो औलिया यानी जो ऊंचे दर्जे के औलिया होते हैं। इस दुआ में हुस्ने खात्मा की दुआ खास तौर पर काबिले नजर है कि अल्लाह ताला के मकबूल बंदों का रंग ये होता है, यानी उनकी सिफत, रंग क्या होता है, किसी की सिफत होती है रंग, ठीक है, तो उनकी सिफत ये होती है कि कितने ही दर्जात आलिया दुनिया और आखिरत के उनको नसीब हों और कितने ही जाहो मनसब उनके कदमों में हों, वो किसी वक्त उन पर मगरूर नहीं होते। मगरूर नहीं होते का मतलब क्या होता है, मगरूर का जो लफ्ज है वो गरर से निकला, अरबी जुबान में असल लफ्ज है गरर, और गरर का मतलब होता है धोखा, वो धोखे में नहीं पड़ जाते। क्या मतलब धोखे में नहीं पड़ जाते, कि वो समझना शुरू कर दें कि ये तो उनकी कोई मीरास है, ये तो उनकी कोई प्रॉपर्टी है जो उन्होंने नेक काम किए, या उनको जो है वो दुनियावी या दीनी मनसब अता हो गए हैं, ये उनकी कोई जाती मिल्कियत है, अब ये मिल्कियत उनसे कोई नहीं छीन सकता, ये होता है धोखे में मुबतला हो जाना, ठीक है ना, और इसी को जो है वो मगरूर कहते हैं, ठीक है, बल्कि हर वक्त उसका खटका लगा रहता है, यानी अगर हकीकत में देखा जाए ना तो इसको तकब्बुर नहीं कहते, ये समझना कि जो कुछ मेरे पास है ये मेरे पास से कभी भी नहीं जाएगा, ये मेरी मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, तो ये तकब्बुर नहीं है, ये तकब्बुर नहीं है, तकब्बुर तो होता है कि मैं फलाने के मुकाबले में अफजल हूं, मैं उससे बेहतर हूं, मेरे पास जो है वो उससे ज्यादा माल है, मेरे पास उससे ज्यादा जो है वो अच्छा घर है, उससे ज्यादा अच्छी मेरे पास गाड़ी है, या उससे ज्यादा मेरे पास इल्म है, ये तकब्बुर होता है। यहाँ पे तकब्बुर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे तो बात हो रही है धोखे की, मिस कंसेप्शन की, मिस अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है, तो ऐसे लोग जो है ना ये तकब्बुर तो रूहानी शदीद रूहानी बीमारी होती है, ये जो लोग हैं ना जिनकी यहाँ पे बात हो रही है ये कौन लोग होते हैं, ये आरिफीन होते हैं, आरिफीन मुकर्रबीन अल्लाह ताला के करीब जो होते हैं ना, जो अल्लाह ताला को पहचानते हैं, अल्लाह ताला की समझ रखते हैं, अल्लाह ताला की बेनियाजी से वाकिफ होते हैं, राइट, जो अल्लाह ताला के इतने दोस्त होते हैं कि उनको अल्लाह ताला अपने करीब कर लेते हैं, ये लोग जाहिर है, आप जब किसी के दोस्त होते हैं उसके साथ आपका वक्त गुजरता है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का वक्त अल्लाह के साथ, जलवत में भी और खलवत में भी, इसी को तो कहते हैं वक्त गुजारना। वरना यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई अर्श के ऊपर को थोड़ी पहुंचे हुए होते थे, कभी भी नहीं गए अर्श के ऊपर, बल्कि आसमानों में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन से, दूसरे दूसरे आसमान पर है, चौथे आसमान के ऊपर है, ये दूसरे आसमान के ऊपर है, राइट। तो अल्लाह के साथ हर वक्त रहने का मतलब क्या, दिल में अल्लाह की याद हर वक्त रहे, ठीक है ना। तो ये दोस्त लोग होते हैं ना, ये करीब लोग होते हैं, तो ये जो करीब होगा वो फिर पहचानेगा ना। आप किसी के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारे तो आप उसको पहचान जाते हैं, उसकी सिफात को पहचान जाते हैं, उसके गुस्से को पहचान जाते हैं, उसकी खुशी को पहचान जाते हैं, तो मुकर्रबीन आरिफीन बन जाते हैं, वो पहचानने वाले बन जाते हैं, ठीक है। तो वो फिर मगरूर नहीं होते कि भाई जिसने मुझे दिया है ना वो ऐसा है कि मुझे तो उसकी जरूरत है, उसको मेरी कोई जरूरत नहीं है, उसको मेरी कोई जरूरत नहीं है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं हो जाएगी अगर मुझे उठा करके वो मरदूद कर दे, कोई कमी नहीं होगी उसके खजाने के अंदर, मेरी हैसियत क्या है उसके सामने ना। बल्कि मुझसे अच्छे अच्छे इतने बंदे उसके उसको खुश करने वाले पहले से गुजर भी गए हैं और आज भी मौजूद हैं, ऐसे ऐसे बंदे, मैं किस खेत की गाजर लूंगी, ठीक है। तो वो कभी मगरूर नहीं होते, बल्कि हर वक्त इसका खटका लगा रहता है कि कहीं ये हालात सल्ब ना हो जाएं या कम ना हो जाएं। सल्ब हो जाने का मतलब होता है किसी चीज को आप खींच करके छीन लें किसी से, या कम हो जाए, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाए, इनकी ग्रेविटी कम हो जाए, ठीक है। तो इसकी दुआएं मांगते रहते हैं कि अल्लाह ताला की दी हुई जाहिरी और बातिनी नियामतें मौत तक बरकरार रहें, बल्कि उनमें इजाफा होता रहे, ठीक है। तीन किस्म के खौफ होते हैं इंसानों को, नेक इंसानों को तीन किस्म के खौफ होते हैं। एक होते हैं ईमान, जो अवामुन नास ईमान वाले होते हैं, मुसलमान होते हैं, आम लोग हमारे जैसे, ठीक है ना। तो उनका क्या खौफ होता है, अल्लाह ये हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अवामुन नास का खौफ ये होता है कि अगर हमने गुनाह कर लिया ना तो हमें सजा मिलेगी, अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे, पिटाई होगी, सजा मिलेगी, जिल्लत और रुसवाई हो जाएगी, तो ये अवामुन नास का खौफ कहलाता है, पिटाई का खौफ, ठीक है। एक दूसरे दर्जे का खौफ होता है सालिहीन का खौफ, ये वो लोग होते हैं जो कि नेकी में लगे रहते हैं, हर वक्त भाग भाग करके नेकी करते हैं, थक थक करके नेकियां करते हैं और नेकियां कर करके थकते रहते हैं, इनकी जिंदगी का मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला को राजी करना, सवाब कमाना, जन्नत में जो है वो अपने दराजात बनाना। लेकिन इनको किस चीज का खौफ लगा होता है कि कर तो ली है, पता नहीं कबूल होगी क्या नहीं, कबूलियत का नहीं पता, नेकी भी करी है अल्लाह की तौफीक से करी है, लेकिन कबूलियत एक अलग दर्जे की चीज होती है। तो ये सालिहीन का खौफ होता है, कबूलियत का खौफ, रद्द कर दिए जाने का खौफ। और जो आरिफीन होते हैं ना, जो सबसे ऊंचे दर्जे का खौफ होता है, वो उनको क्या होता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की बेनियाजी, एक तो अल्लाह ताला की बेनियाजी से वाकिफ होते हैं कि अल्लाह ताला को हमारी कोई जरूरत नहीं, और दूसरा वो अल्लाह ताला को पहचानते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अल्लाह ताला को पहचानते तो हैं तो अल्लाह ताला की बेनियाजी से वाकिफ होते हैं, लेकिन दूसरी बात क्या कि चूंकि वो अल्लाह ताला के करीब होते हैं ना, अल्लाह ताला के दोस्तों में शामिल होते हैं, तो भाई अगर आप और हम भी किसी बादशाह सलामत के साथ दोस्ती कर लें तो क्या होगा, फिर बादशाह सलामत जिसको दोस्त बनाएंगे तो अपने खजानों में से कुछ उसको देते नहीं रहेंगे, फिर क्या कुछ नहीं देंगे, क्या तोहफे तहाइफ नहीं देंगे, क्या अपनी दोस्ती का जो है वो कोई टोकन, टोकन ऑफ फ्रेंडशिप है ना, छोटे छोटे लोग जो है वो एक दूसरे को टोकन और फ्रेंडशिप देते हैं, तो बड़े बड़े लोग अगर किसी छोटे को अपना दोस्त बना लें तो उसको तो खूब सारे जो है वो हदिये देंगे, खूब। इनके हदिये क्या होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से इनको कैफियात मिल रही होती है, कैफियात, अल्लाह ताला के अश्क की कैफियत, अल्लाह ताला की मोहब्बत, मारिफत, अल्लाह ताला की खशियत की कैफियत इनको मिल रही होती है, नमाजों के अंदर इनको जो है ना वो अल्लाह ताला की खशियत नसीब हो रही होती है, कुरान मजीद पढ़ने में इनको लुत्फ आ रहा होता है, ऐसा दिल चाहता है इनको कि बस तिलावत ही करते रहें, अगर मजबूरियां ना होती, काम काज की जिम्मेदारियां ना होती, तो ये हर वक्त तिलावत ही करते रहते या नमाजें ही पढ़ते रहते, क्योंकि उसी के अंदर जो है वो अल्लाह ताला के साथ इनको सबसे ज्यादा कुर्ब नसीब होता है। तो ये कैफियात वाले लोग होते हैं, इनको किस चीज का खौफ होता है, इनको इसी बात का खौफ होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिए तो हैं ये तोहफे, लेकिन अल्लाह ताला इनको लेने पर भी कादिर है, ठीक है। उनको अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से खौफ है। खुफिया तदबीर क्या चीज होती है? खुफिया तदबीर होती है कि कोई किसी के खिलाफ ऐसे कोई प्लान करे, कोई ऐसे प्लान करे कि जिससे कि जिसका कि उसको पता ही ना चले कि ये क्या प्लान है और करने वाला कौन है। ये क्या प्लान है उसके खिलाफ जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है, ये असल में क्या हो रहा है मेरे साथ, इसको पता ही ना चले, या ये कि उसको ये पता ना चले कि ये प्लान किसकी मंशा के ऊपर हो रहा है, किसकी तरफ से ये प्लान हो रहा है, इसको खुफिया तदबीर कहते हैं। इसकी मिसाल हमारे मशायख बयान करते हैं कि जैसे ना कोई किसी दफ्तर में काम करता है और उस दफ्तर का जो बॉस है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, वो फैसला कर ले कि यार मुझे ये बंदा नहीं पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, ये इसकी हरकतें, इसकी सिफात ऐसी हैं, आई डोंट वॉन्ट टू सी हिम इन माई ऑफिस, आई डोंट वॉन्ट टू एम्प्लॉय हिम एनी मोर। काम तो ये कर रहा है लेकिन साथ साथ इसकी जो हरकतें हैं, इसके नखरे हैं, इसके जो है ना वो मिजाज के मामले हैं, तो यार आई कैन नॉट टॉलरेट दैट। बेशक काम कर रहा है मेरा, बेशक जो है वो कमा के ला रहा है, लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। अब जो है ना वो उसको फायर भी नहीं करना चाहता, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फायर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उसका कुछ और इंप्रेशन पड़ जाएगा, कुछ और मसला हो जाएगा उसके, तो जो भी है रीजन है वो उसको स्ट्रेट अवे फायर नहीं करना चाहता। अब वो जो है ना वो कोई ऐसे हालात पैदा कर दे अपने ऑफिस के अंदर, ऐसे हालात पैदा कर दे, मिसाल के तौर पर किसी दूसरे एम्प्लॉय को इसके पीछे लगा दे, वो उसको तंग करना शुरू हो जाए कि ये बंदा जो है वो जॉब से रिजाइन करने के ऊपर मजबूर हो जाए और ये खुद से रिजाइन करे, लेकिन क्यों मजबूर हो करके, इसको किसी ने कहा नहीं है रिजाइन करने को, हालात ऐसे बन गए कि ये रिजाइन करने पर मजबूर हो, इसको कहते हैं खुफिया तदबीर। तो हम अगर अल्लाह ताला की दीन का काम कर रहे हैं ना, जो भी काम कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, मुसल्ले की इबादतें कर रहे हैं, या हम दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं, या हम कोई और इकामत दीन का काम कर रहे हैं, या हम कोई और काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला अगर चाहें तो ऐसे हालात पैदा कर दें कि हम खुद इस काम को छोड़ने पर मजबूर हो जाए और हम किसी दूसरे काम के अंदर लगने पर मजबूर हो जाए। अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं, इसको अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर क्या। तो आरिफीन अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरते रहे, और इसी की एक शक्ल ये है खात्मा बिल बिसू, सूए खात्मा इसको कहते हैं, इंसान का खात्मा खराब हो जाए, सारा दिन सारा जिंदगी दीन का काम करता रहा लेकिन खात्मा बिलखैर नहीं हुआ इसका। इसकी वजह क्या बनती है? इसकी वजह जो है ना वो रूहानी बीमारियां बनती हैं, इसकी वजह जो है ना वो हमारे गुनाह बनते हैं कि हम जलवत के अंदर तो बड़े नेकी के काम कर रहे हैं और खलवत के अंदर जो है ना वो इंसानों से छुप करके, अल्लाह ताला से तो नहीं छुप सकते ना खलवत के अंदर, वहां पर जो है हम अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं, वहां पर जो है हम गुनाह कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला को हमने आम इंसानों से भी कमतर दर्जा दिया हुआ है। अब सोचें जरा, अल्लाह ताला को अगर हम ये दर्जा देंगे अपनी जिंदगी के अंदर तो अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर क्या हक बजानब नहीं होगी हमारे खिलाफ? हक बजानब नहीं होगा अल्लाह ताला कि हमें जो है वो जॉब से जो है वो रिजाइन करवा दे हालात पैदा ऐसे करके? ठीक है, डरते रहना चाहिए, बेशक हम आरिफीन के दर्जे पे तो नहीं है लेकिन डरने के लिए जो है ना वो कोई पैसे लगते नहीं है उसके अंदर। अब इनको देखो, इनको जो है वो टाइम प्लीज जाए ना, आपको किसने कहा क्लास में रहने के लिए? ठीक, अल्लाह ताला अक्ल और समझ अता फरमाए। बहरहाल आपने जो यहाँ पे मैसेजेस लिखे हैं, इस समवन इज नॉट वरीड अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ हिज डीड्स सो इट इज ए साइन दैट ही इज नॉट ए ट्रू मुस्लिम। ट्रू मुस्लिम, यस ऑफ कोर्स, ठीक है, रद्द ना कर दिए जाए, ठीक है, आपने इसी बात को, इस्तिदराज भी इसी को कहा जाएगा। इस्तिदराज जो है वो एक टेक्निकल टर्म है, तो ये जो है वो खास जगह के लिए इस्तेमाल होता है कि जो यानी असबाब के बगैर जो काम हो जाता है, जिसमें अल्लाह ताला की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है और वो काम किसी फासिक फाजर काफिर के हाथ पर हो, तो उसको इस्तिदराज कहा जाए, ठीक है ना। खुफिया तदबीर जो है ना ये तो दीन का काम करने वालों के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है ना, कि अल्लाह का काम कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयड हैं, कंपनी के अंदर जो है वो सर्विस दे रहे हैं, और उधर से जो है ना वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ये फैसला हो गया कि नहीं, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस, बेशक ये मेरे दफ्तर में काम कर रहा है, बेशक मेरी कंपनी के लिए जो है वो कमा के ला रहा है, दीन में लोगों को दाखिल करने का सबब बन रहा है, ये है अल्लाह ताला की कंपनी में काम करने का मतलब, दीन में लोगों को दाखिल करने का सबब बन रहा है, ठीक है, काफिर फासिक को थोड़ी दीन में दाखिल करने का जो है वो सबब बन रहा होता है, तो इस्तिदराज तो काफिर फासिक के हाथ पे हो रहा होता है, खुफिया तदबीर एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ये टर्म, यानी जो अल्लाह ताला ने हजरत अताउल्लाह सिकंदरी के साथ की थी, नहीं, अताउल्लाह सिकंदरी रहमतुल्लाह के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ये हुआ था, खैर ये हुआ भी नहीं था, वो भी एक जो है वो टेम्पररी चीज थी, जो हजरत शिबली रहमतुल्लाह के जो 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 शेख थे, क्या नाम था उनका, उनके साथ जो है वो एक महदूद वक्त के लिए ऐसा मामला हुआ था, ठीक है, अल्लाह ताला ने सारी चीजें जो है उनसे सल्व कर ली थी, लेकिन बिलाखिर उनको तौबा की तौफीक भी अता फरमा दी थी, जी वो हजरत अताउल्लाह सिकंदरी रहमतुल्लाह अलैह नहीं थे, बाय द वे अताउल्लाह सिकंदरी रहमतुल्लाह का जो है ना वो कौल मशहूर है कि अल्लाह ताला बसा औकात नेकी की तौफीक भी दे देता है, इबादत की तौफीक भी दे देता है, लेकिन उसको कबूल भी नहीं करता, ठीक है, तो आपने जिनका लफ्ज जिनका नाम इस्तेमाल किया है ना, तो वो सालिहीन के खौफ से उसका उसका ताल्लुक बनता है, जी हजरत अब्दुल्ला अंदलुसी रहमतुल्लाह, ठीक है, उनके साथ ही वाला, ठीक है, बाकी एक पैराग्राफ रह गया इंशाल्लाह, बल्कि नहीं एक पैराग्राफ तो नहीं, काफी सारा भी इस की बारफ मिसाइल में रह गया इंशाल्लाह, अगली क्लास के अंदर अलग तो फिर से पढ़ लेंगे, अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमा ले और हम सबको सूए खात्मा से महफूज फरमा दे, और खात्मा बिल खैर जो है वो हमारे किस्मत में हमारे नसीब के अंदर लिख फरमा दे। क्या लिखा आपने, अहले किताब का सलाम का जवाब देना चाहिए या नहीं, अहले किताब के सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए, उसके अंदर सिर्फ एक जो है वो गुंजाइश उलमा ने लिखी है कि अगर उनसे फितने का खौफ हो, ठीक है, तब जो है वो उनको वालेकुम अस्सलाम बस कह सकते हैं, वरना वो भी नहीं करना चाहिए, देखें अस्सलाम वालेकुम जो है ना ये अल्लाह ताला की सिफत अस्सलाम अलिफ लाम के साथ है, अलिफ लाम के साथ अस्सलाम, ये अल्लाह ताला की खास सिफत है, सलामती की सिफत, और ये सलामती की जो सिफत है ना, हम किसी गैर मुस्लिम के लिए गैर मोमिन के लिए इस सिफत को जो है वो प्रोवोक नहीं कर सकते, या इस सिफत की उसको दावत नहीं दे सकते, सॉरी इस सिफत सिफत की उसको दुआ नहीं दे सकते, ठीक है ना, जब तक वो इस्लाम वाला ना हो जाए, मोमिन ना हो जाए, ठीक है, तो ये हमारे ये कोई वो नहीं है, हमारी मन मर्जी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता कि हम खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह या खाली अस्सलाम वालेकुम भी किसी काफिर को किसी गैर मुस्लिम को मैंने शुक्र दी, चाहे वो अहले किताब के, ठीक है, वालेकुम बोलना बस इसकी तो इजाजत है, क्योंकि वो क्या है जो उन्होंने कहा बस उसके ऊपर आपने रखा, ठीक है, बहरा वाखुदा अलहमदुल्ला।